गए, टाइम 8:30 बज गए ना, क्या करना है 8:30 बजे, क्या बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो, ये शिविर की मेरे विचारों में सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि ये जो सब अब तक आपने सीखा ना, वह भी बहुत अच्छा है, परंतु उसमें जितनी मेहनत करते हो उतनी प्राप्ति होती है, जितना समय प्राणायाम किया उतनी आपको प्राप्ति होगी, रोज आपने एक्सरसाइज की आपको प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा है, करना ही है। परंतु हम सब यह सोचते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति कैसे हो, वो कैसे संभव है, कहेंगे कि भी कम से कम मेहनत और प्राप्ति है अनेक गुना ज्यादा प्राप्ति होगी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर अहमदाबाद से बंबई जाना है तो कोई ना कोई रास्ते से जाना पड़ेगा, परंतु वैज्ञानिकों ने देखा कि एक अणु इस मिली सेकेंड में यहां है, दूसरे मिली सेकेंड में बॉम्बे में मिलता है। तुमको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उसको नाम दिया क्वांटम जंप, क्वांटम लीप। तो ऐसे ही जीवन में भी, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, प्रगति का सवाल है, उन्नति का सवाल है, प्रसिद्धि का सवाल है, सचमुच आप क्वांटम लीप कर सकते, क्वांटम जंप लगा सकते हैं, कि आज आप कुछ अवस्था में हो, आपका बिजनेस कुछ स्थिति में है, आपकी बुद्धि कुछ अवस्था में है, और कल आप सुपर इंटेलिजेंट बन गए, कि जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती, ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट कैसे बन गया। तो इसका आधार है, देखिए हम अपनी चेतना को चित्र के द्वारा देखेंगे, कुछ चीजें बोल के नहीं समझाई जा सकती है, उसको चित्रों के द्वारा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये चित्र हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि अगर हम अपनी चेतना को एक गोलाकार के रूप में सोचे, कि भी हमारी चेतना एक गोल है, यह जो चेतना हम गोलाकार के रूप में है, उसका बाहर का हिस्सा अगर आप देखेंगे, एक क्लिक करेंगे, देखिए बाहर का जो हिस्सा है, कि जो चेतना का जागृत हिस्सा है, कॉन्शियस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि जन्म से लेकर के आज तक क्या क्या घटनाएं हुई है उसको याद करो, तो आप कितना याद कर सकेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कर सकेंगे, हाँ 2-4% 5% ही कर सकेंगे, भले एक महीने का भी आपको टाइम दे, हाँ तो एक महीने तक आपको कुछ ही बातें याद आई, फिर भी जो भी घटनाएं आपके जीवन में हुई है A to Z सब हमारी चेतना में समाई हुई है, आत्मा में समाई हुई है, क्योंकि ये थोड़ी गहराई तक चली गई है इसलिए आपको याद नहीं आती है। 8 दिन तक वह घटनाएं आपको याद नहीं आई, परंतु 9वें दिन आप स्नान कर रहे थे, अचानक कोई बात याद आ गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसा क्या क्यों हुआ, क्योंकि वो प्री कॉन्शियस में चली गई थी, सब कॉन्शियस में चली गई थी, वो वहां से थोड़ी सी बाहर आई, आप उस समय रिलैक्स थे, स्नान करते करते आपको वह याद आ गई, कभी टीवी देखते देखते कोई घटना याद आ जाएगी, वो सभी सब कॉन्शियस में है, और उससे भी गहराई में कई बातें चली गई है कि जो आपको कभी भी याद नहीं आती है, परंतु यह सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जो बातें वे बड़ी महत्वपूर्ण है, उससे भी गहराई में आप देखेंगे तो जो बिंदु जब जब कर रहा है, सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है आत्मा का, वह सेंट्रल मोस्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें जबरदस्त शक्ति है, आप कल्पना भी नहीं कर सको उतनी शक्ति यह सेंट्रल मोस्ट पॉइंट में है। ये जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है वो सुपर इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिशाली है कि उसकी भी ये दुनिया में कोई ऐसा बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कभी भी कंप्यूटर हम नहीं बना सकते हैं, इतना सुपर इंटेलिजेंट यह हिस्सा है, और इस हिस्से को मैं कहता हूं यह सुप्रा कॉन्शियस है, अति चेतन हिस्सा है। मनोविज्ञान में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, परंतु कुछ योगियों ने इसके बारे में कहा, क्योंकि योग अवस्था में ही वह एक्टिव होता है। मनोवैज्ञानिक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, मनोवैज्ञानिक तो प्री कॉन्शियस तक पहुंचे, अनकॉन्शियस तक ही पहुंचे। परंतु कई बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, इस पर मैं भी विशेष काम करना चाहता हूं कि भी इसी के बारे में बहुत कुछ लोगों को समझाया जाए, लिखा जाए, तब लोग जो पूरी हमारी सुषुप्त शक्ति है उसका पूरा उपयोग कर सकेंगे। ये जो सुप्रा कॉन्शियस है वह एक फरिश्ते जैसा है कि जो फरिश्ता कमाल कर सकता है। यह फरिश्ता आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा हो ऐसी प्राप्ति आपको करा सकता है, परंतु परंतु यस जो सुप्रा कॉन्शियस है, अति चेतन फरिश्ता है, वह सोया हुआ है ना। अभी क्योंकि वह सो गया है तो उससे आप काम नहीं ले सकते हैं। अब इस फरिश्ते से काम लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा बोलिए। नहीं बोलते हैं, लगता है समझ में नहीं आता है। इसको जगाना पड़ेगा, बस ये काम करना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। हम क्या समझते हैं कुछ प्राप्त करना हो रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, टेंशन लेना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, गला काटना पड़ेगा किसी का, कंपटीशन करनी पड़ेगी, तब मेरा बिजनेस जाके अच्छा होगा। वो कोई रास्ता नहीं है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बस इतना छोटा सा काम करो, इस सुप्रा कॉन्शियस को जगा दो। देखो, सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको कभी ये विचार आया? आपने से बहुत लोगों ने इस कहानी को सुनी है, इस बात को सुना है, परंतु कभी हमने सोचा नहीं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में वर्ल्ड असेंबली ऑफ रिलीजन में खड़े हुए और लोगों के बीच में उन्होंने कहा, नहीं, अनेक धर्म के लोग आए थे, सिर्फ भारत से बहुत कम लोग थे, तो लोगों के बीच में उसने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो जानते हो ना क्या हुआ? लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। एक दो मिनट नहीं, पूरी 5 मिनट तक तालियां बजती रही। लोग खड़े हो गए, खड़े होके उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनसे पहले भी बड़े बड़े विद्वानों ने प्रवचन दिए थे, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों ने भी प्रवचन दिए थे, परंतु किसी को इतना पावरफुल रिस्पॉन्स नहीं मिला था। क्यों? बात तो बड़ी सिंपल थी, कोई भी कह देता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, एक भी बंदा ताली नहीं बजाता। परंतु इतने सारों ने क्यों रिस्पॉन्स दिया? तो जब मैंने आध्यात्मिक रूप से इस बात पर विचार किया, मनोविज्ञान में भी इसका उत्तर नहीं था, जब कहीं जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे लोगों को जब पढ़ा, तो तब उसका उत्तर मिल गया कि विवेकानंद का सुप्रा कॉन्शियस जाग गया था। और कैसे जागता है सुप्रा कॉन्शियस? रिलैक्सेशन में भी सुप्रा कॉन्शियस नहीं जागता है, प्राणायाम करो, आसन करो, सुप्रा कॉन्शियस नहीं जागता है। सुप्रा कॉन्शियस कब जागता है? जब आप पूरी तरह से 100% टोटली 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 अपनी सुधबुद्ध को खो देते हैं, जब पूरी तरह से आप समय और आसपास के वातावरण को भूल जाते हैं, नहीं, अपने शरीर के भान को भी जब आप पूरी 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 तरह से भूल जाते हैं, तो तब सुप्रा कॉन्शियस जागता है। और यह कोई आसन प्राणायाम से नहीं हो सकता है, भले वो बहुत अच्छे, मैं ये नहीं कहता हूं, करना ही है, स्वास्थ्य के लिए उसको करना ही है, परंतु अगर सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है तो ध्यान करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा ध्यान जिसमें यही लक्ष्य हो कि देह के भान को मुझे भूल जाना है। जिस भान, जिस ध्यान में देह की बात है वह आपको देह से परे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि देह को ही आप देख रहे हो। परंतु जिस ध्यान में देह के परे जाना है वही ध्यान सुप्रा कॉन्शियस को जगा सकता है। और राजयोग में देखिए यही लक्ष्य है। थोड़ा थोड़ा आपने सुना भी है डॉक्टर कोकिला बहन के द्वारा कि मैं शरीर से परे व दिव्य चेतना, यह शरीर तो हड्डी मांस का पुतला है, यह शरीर नाशवान है, मैं आत्मा अविनाशी हूं। इस बात को सदैव लाना है। देखिए जिस दिन हम स्मशान में जाते हैं ना, तो उस दिन तो आपको थोड़ा वैराग आता है कि भी मुझे भी एक दिन यहां आना है, परंतु जैसे ही घर आते वैसे के वैसे हो गए। एक तो रोज याद करो कि भी मुझे जानना है, हाँ नजदीक में स्मशान हो ना तो रोज विजिट भी करो, वॉकिंग करते करते वहां पहुंच जाओ, ताकि आपको याद आए कि भी एक दिन मुझे भी यहां आना है और देह भान से परे हो जाए। और वो भी रोज नहीं होगा, राजयोग के अभ्यास में भी रोज हम 100% अपनी सुध बुध को नहीं भूलते, लेकिन लक्ष्य लेकर के करते रहो तो 15 दिन, एक मास में एकाध बार ऐसी स्थिति आएगी जब 100% आप इसको भूल गए, है ना। विवेकानंद में भी ऐसा हुआ होगा, जब भारत से वापस भी जा रहे थे, जब शिकागो में जाना था उनको कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, तब पैसे भी नहीं थे, हाँ किसी से पैसे लेके शिकागो गए, परंतु क्यों इतनी मेहनत की, क्योंकि उनकी आत्मकथा में भी यह बात आती है कि मुझे जरूर यह वर्ल्ड असेंबली में जाना है, क्योंकि यह सिद्ध करना है कि मेरी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। बार बार यह सोचा था, कोई धर्म की बात नहीं बताता हूं, यह नहीं सोचना कि भी कोई धर्म की बात कर रहे, परंतु यह विचार था। वहां गए तो निमंत्रण गुम हो गया, हाँ कहीं भटकना पड़ा, रात भर रेलवे स्टेशन में बिताई, हाँ घर घर जाके लोगों से कुछ मांगना पड़ा। लेकिन इन सब अवस्थाओं में एक ऐसा समय आया होगा कि जब अपनी सुध बुध को पूरा उन्होंने खो दिया, और उस समय तो कोई विचार नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, हाँ यह बड़ी एक डेलिकेट परिस्थिति है, सुप्रा कॉन्शियस को जगाना वह एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। उसमें दो काम करने, एक तो सुध बुध को हमने खो दिया ताकि सुप्रा कॉन्शियस जाग गया, जो अति चेतन हिस्सा है आत्मा का वह हिस्सा जाग गया। अब जब आप मूल स्थिति में आते हैं उस समय तो 5-10 सेकंड कोई विचार नहीं है, परंतु जब उससे आप ओरिजिनल स्टेज में आ रहे हैं तब जो पहला विचार आता है वही सुप्रा कॉन्शियस कैच कर लेता है। वह पहला विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस समय आपको यह विचार आया कि भी एक प्रमोशन मिल जाए तो अच्छा है, तो और कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा, तो उस समय आने वाला पहला विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको लिखना है, थोड़ा टाइम देना, 1 सप्ताह 10 दिन का भी टाइम दो, आज से शुरू कर देना, लिखना प्रारंभ कर दो कि सचमुच जीवन में मैं क्या चाहता हूं, बहुत ऊंचे से ऊंची क्या चीज चाहता हूं। भले ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, ये भी आप लिख सकते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, इसे कोई बहुत बड़ी चीज की जो आपको इस क्षण असंभव भी लगती हो तो वह भी सुप्रा कॉन्शियस संभव बना देगा। परंतु इसमें यह भी जरूर लिखो, क्योंकि आप सोचेंगे कि मुझे 5 करोड़ रुपया कमाना है, जरूर सुप्रा कॉन्शियस वो आपको दे देगा, परंतु यह नहीं है कि उससे आपको सुख मिलेगा, तो आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही सुप्रा कॉन्शियस करेगा। इसलिए ऐसी कोई चीज लिखो जिसमें भले भौतिक प्रगति की भी बात हो परंतु आध्यात्मिक उन्नति की भी बात हो कि आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा पर मुझे पहुंचना है, सदा के लिए सुख शांति को प्राप्त करना है, पूर्ण रूप से पवित्रता और शांति का अनुभव करना है। ऐसा एक वाक्य लिखो, तीन चार लाइन में एक वाक्य लिखो और इसको रट लो पूरी तरह से। दिन में रोज दो बार तीन बार इसको रिपीट करो और नींद में भी वो आपको याद होना चाहिए, इतना उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। बार बार अगर उसको आप दोहराएंगे तब यह संभावना है, पक्का नहीं कह सकते, तब यह संभावना है कि जब आपका सुप्रा कॉन्शियस जाग गया, जब आप अपनी पूरी सूझबूझ को आपने खो दिया और जब उसमें से जब सामान्य स्थिति में जागृत अवस्था में आ रहे हैं, तब पहला ही विचार यह आएगा कि मुझे पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति करनी है, सुख शांति को प्राप्त करना है। तो सुप्रा कॉन्शियस कैच कर ले। आया समझ में? हाँ या ना? अच्छा लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? तो देखो यह काम जरूर करना है। यह आप पूरा अच्छे से आप समझे होंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो वह स्थिति बनेगी। और ज्यादा इस बात की डिटेल में नहीं जाता हूं। ये पूछ रहे हैं, ये प्रश्न है कि थाइज में ज्यादा फैट जमा हो गई है तो उसकी कसरत क्या है? देखो ये प्रश्न के साथ और भी प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं कि एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि सारे शरीर का वेट कम होना चाहिए ना। कोई एक स्पेसिफिक हिस्से में भी इफेक्ट होगी परंतु जब आपका वेट कम होता है ना तो सबसे पहले पेट में से कम होता है। अगर आप 5 किलो वेट कम करेंगे तो 4 किलो पेट में से ही कम होगा, अगर पेट में ज्यादा चर्बी है तो। जिसकी हिप्स में ज्यादा चर्बी है, हाँ, बहनों की हिप्स में ज्यादा चर्बी होती है, तो जैसे आपका वेट कम होगा इसी का जो हिस्सा है वही आपका कम होगा। तो वेट को तो कम करना ही है, थोड़ा सा यह भी बताऊंगा कि वेट को कम कैसे करना है। और दूसरा स्पेशल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि जिस हिस्से में चर्बी जमा हुई है वहां की मांसपेशियों को एक्टिव करो। वहां की मांसपेशियों को एक्टिव आप करेंगे तो उसके ऊपर जो चर्बी जमा हुई है वो कम होगी। जैसे यहां पर अगर आपको चर्बी जमा हुई है तो इस हिस्से की एक्सरसाइज ज्यादा करनी, जो आर्थराइटिस में भी बताया ना, इसे दबाओ, हाँ इसे इसको दबाओ तो इस हिस्से के ये मांस मसल्स को आपको एक्सरसाइज मिल रही है, तो उसको एक्सरसाइज मिल रही है तो जब अब चर्बी कम होने लगेगी तो यहां की चर्बी कम होगी। और कुछ मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जो मूवमेंट है, ये आप मूवमेंट करेंगे तो यह मांसपेशियां आपकी एक्टिव हो रही है और ये एक्टिव हो रही है तो वहां की चर्बी पर ज्यादा असर होगी। दूसरे पैर से भी कि वहां की जो चर्बी है उस चर्बी पर ज्यादा असर होगी। पेट के लिए जो मैंने स्पेशल एक्सरसाइज बताई है आपको कि वह पेट की एक्सरसाइज करो तो पेट की चर्बी कम होगी। देखो चेहरे की थोड़ी बताता हूं, हम सबकी इच्छा होती है ना कि चेहरा ठीक हो, तो चेहरे की 2-3 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक तो है ऐसे जीभ को बाहर निकालना और पूरा घुमाना, करते रहिए जब तक थोड़ा भी दर्द हो। चेहरे में मामूली दर्द हो तो बहुत अच्छा है, आमतौर पर दर्द नहीं होना चाहिए व्यायाम करते समय, तुम यहां पर मामूली दर्द हो तो अच्छा है, उसका मतलब कि ये चर्बी है वह कम हो रही है। और एक है जिसको कहा हनुमान बन जाओ, कैसे सचमुच गुब्बारा भी फुला सकते, बड़ा गुब्बारा लो और उसको फुलाओ, हाँ, इससे भी ये मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, ये चर्बी है आपकी कम होगी। और एक बहुत अच्छा है जिसको मैं कहता हूं शेर बन जाओ, कैसे करो करो, देखा बोले बिगर कर रहे, अच्छा लगता है ना, ये बहुत अच्छा है। एक तो यहां की सारी चर्बी आपकी कम हो गया, देखो करेंगे आप भी करके देखो, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये चर्बी का और भी ये करना है। हा? क्यों करना है पता है, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। करना दो काम करना है, एक तो गुस्सा खत्म करना है, धोखे लगा लगा के कपड़े धो, है ना, तो गुस्सा कपड़ों पर निकल जाए, और दूसरा इससे भी चेहरा भी अच्छा होगा। और भी ये भी कर सकते हैं, समझे, ऐसा नहीं करना है तो ऐसे दबाइए, हाथ से नहीं, अपने आप दोनों दांतों को दबाना पड़ेगा, अंदर खींचना पड़ेगा गले को, आपको देख सकते तो देखिए ऐसे, आपको खुद फील होगा कि ये सारी मांसपेशी आपकी कड़क हो रही है, और होगा तो जो डबल चीन बन रही है हम सबकी, उसमें भी हमें राहत मिलेगी। और एक काम करना, चेहरा अच्छा करना है ना, न्यूज़पेपर में पढ़ के फालतू उल्टा सीधा चेहरे पे नहीं लगाओ, है ना, मौसम्बी का रस लगा दो, ये करो, पता नहीं क्या क्या आता है। हाँ, हो सकता है कि उससे कुछ फायदा भी होता होगा, लेकिन उतना ही नुकसान होता है कि अभी भले चेहरा थोड़ा आपका डार्क है परंतु एक जैसा है, ये सब उल्टा सीधा आप लगाएंगे ना तो सफेद काले दाग होने लगेंगे और खराब लगेगा, और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सच मानिए, नहीं करिए, कोई कितना भी आपको कहे। एक काम कर सकते हैं आप, हाँ, कि जो डेफिनेटली हेल्प करता है, हाँ, एक काम क्या कर सकते हैं कि जो डेड स्किन निर्माण होती है, 10-15 दिन में जो स्किन की कोशिकाएं मरने लगती है ना, वो जमा होती है, उसको हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, आजकल स्टीम इनहेलर भी मिलने लगे हैं, छोटे से होते हैं जिससे स्टीम बाहर आती है, तो जो स्टीम आती है ना, वो स्टीम को चेहरे पे लो, टच नहीं करना है, स्टीम को सिर्फ लेना है, वो स्टीम चेहरे पे लगने दो, 3-4 मिनट तक लगने दो, गरम गरम चेहरा हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा। और सरल सा है कि पानी को उबालो, फिर उसको ढक लो, और सारे चेहरे पे वह जो उसकी स्टीम है वह स्टीम को लीजिए, तो सारा चेहरा आपका एकदम पसीना पसीना हो जाएगा, गरम गरम हो जाएगा। ऐसा 3-4 मिनट करिए, और फिर बर्फ नहीं लगाना है, बर्फ का ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी हो, उसको चेहरे पे छिटकिए, अच्छे से चेहरे पे छिटकिए, और फिर टॉवेल लेके घसीए, हाँ, टॉवेल लेके ऐसे घसीए इस डायरेक्शन में, ऐसे टॉवेल लेके अच्छा से घसीए, तो जो डेड स्किन है वह निकलने लगेगी। ऐसा आप 3 बार भी कर सकते, फिर से ठंडा पानी छिटकिए, फिर से घसीए, ऐसा 3 बार भी करो, तुरंत आपको लगेगा कि मेरा चेहरा चमकने लगा, क्योंकि वो डेड स्किन है वह निकलने लगी। हाँ, तो ये एक काम कर सकते हैं, और एक काम ये कर सकते हैं कि जब धूप में बाहर आते हैं तो भले सनस्क्रीन लगाइए, वो भी कईयों को, कईयों के लिए ठीक नहीं है, हाँ, कईयों को सनस्क्रीन से भी काले सफेद दाग होने लगते हैं, लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं होती है तो सनस्क्रीन लगाइए, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं करिए, उल्टी समझ, सबसे अच्छा है ध्यान करो। देखो ब्रह्मा कुमारी बहनों के चेहरे देखे है ना, कुछ भी नहीं करती, कभी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती, फिर भी चमक रहे, क्यों, क्योंकि एक तो खुश है ना, ध्यान करती है खुश है, और दूसरा जीवन पवित्र है ना, पवित्र जीवन बनाओ, आपका ऑरा पावरफुल होगा। हमने ऐसे चित्र भी लिए हैं कि कैसे ना, ध्यान करने से जो हमारा ऑरा है, जो आभा मंडल है, देवताओं के पीछे दिखाते हैं ना, वह भी अच्छा होने लगता। चलो अभी सबसे पावरफुल ध्यान करेंगे, हाँ करेंगे आज कि नहीं करना है, बोलते नहीं है, देखो आज है ना सबसे पावरफुल ध्यान करना है। एक नॉवेल है, उस नॉवेल की कहानी ऐसे शुरू होती है कि साइंटिस्टों को टेलीस्कोप के द्वारा पता चल जाता है कि एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, और 60 दिन के बाद वो पृथ्वी को आके टक्कर मारेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आज का पेपर भी पढ़ा है ना, हाँ, आज के पेपर में भी है, पता नहीं कितने साल के बाद, कहते कुछ साल के बाद एक छोटा ग्रह नजदीक आ रहा है और 36 में, कहते हाँ 2036 में वो भी नजदीक नजदीक आ रहा है, उसको टक्कर मारेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो वो नॉवेल में तो आता है 60 दिन में ही होने वाला है, हाँ अभी तो चलो 30 साल बाकी है तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, तब तक कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ढूंढ लेंगे, परंतु अगर 60 दिन में होना है तो सचमुच इस ध्यान में भी हम ऐसा सोचने वाले हैं, डरना नहीं बिल्कुल। कई लोग आके पूछते, अरे डॉक्टर ऐसा हम सोचेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो आप ही कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा होता है, परंतु ऐसा होना नहीं है। पर अभी तो हम उसमें ऐसा सोचिए इसका अंत बहुत अच्छा है ना, ये विचार तो है लेकिन ये जो सारे ध्यान का अंतिम विचार तो बहुत अच्छा है, जो आप भी सुनेंगे, मुझे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतिम विचार बहुत बहुत अच्छा है। तो इसके कारण कोई नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही होना है। और दूसरा, उस समय जो फीलिंग हो ना वो फीलिंग करो। उस नॉवेल में भी आता है कि पहले तो लोग बहुत डर जाते हैं लेकिन फिर 5-10 दिन में स्वीकार कर लेते हैं, हाँ सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। और थोड़े दिन बीतते हैं, यहां तक अवस्था आती है कि लोग घरों को ताला भी नहीं मारते, ताला मारे बिगर ही बाहर चले जाते, कोई चोरी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि सभी सुधर गए। तो ऐसे आप भी सोचो कि आपके पास 60 ही दिन जीने के हैं तो आप क्या करेंगे। और ज्यादा परिवर्तन का सोचना है, निराश नहीं होना है कि अभी 60 ही दिन बचे हैं, सोचो कि मैं परिवर्तन क्या करूंगा, वो परिवर्तन का सोचो। हाँ, एक बहन ने कहा, दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है हमारा, वहां पर हमने ये कराया, तो एक बहन ने कहा कि वे अभी 30 दिन ही जीने के बाकी थे ना, तो मैंने अपनी बहू को डांटना बंद कर दिया, सोचा अभी 30 दिन ही बाकी है, चलो अभी डांटना नहीं है। तो ऐसे आप भी सोचो कि भी आपके विचारों में, कर्मों में, हर बात में क्या परिवर्तन आएगा, और हम तैयार होते जाएंगे। फिर अंत में शरीर का भी त्याग कर देंगे कि आत्मा शरीर से निकल जाएगी। आप अपनी डेड बॉडी को देख रहे हैं और ये सत्य है, ऐसे हजारों किस्से हैं। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि भी किसी की मृत्यु हो गई, उसको स्मशान घाट पे भी ले गए लेकिन उसका अंगूठा हिलने लगा तो सोचा भी ये तो जिंदा है, उसको फिर से ले आए। परंतु ऐसे अब तो बहुत सारे किस्से हो रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक मसाज के द्वारा अम्बू बैग लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और बहुत सारे लोग अभी ठीक हो जाते हैं और उनके बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव है। तो उस अनुभव में जो बात आई है ना, वही मैं आपको करवाऊंगा, तो इसलिए वह साइंटिफिकली सत्य है। और फिर भगवान आपको वापस भेज देंगे, पहले ही बोलता हूं कि डर नहीं लगे। और आप भगवान से क्या वादा करके आएंगे, जैसे जैसे कहूं फील करना, सब करेंगे ना फील, हाँ या ना? अच्छा चलो, हाँ, कमर को सीधी रखो। और उस दिन ताली बजवाई थी ना, आज दूसरी ताली, आज की ताली है 1 2 3 4 5, हाँ करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। ओके, ओम शांति। हाँ जी, कमर को सीधी रख करके बैठिए, हाथों को ऐसे मोड़ना, हाँ यह सबसे बेस्ट पोजीशन है कि जिसमें आप उस कंपन को भी फील करेंगे, अपनी ऊर्जा को भी फील करते रहेंगे। उंगलियों में जो भी संवेदनाएं हो रही है उन्हीं को फील करते रहिए। जो भी संवेदनाएं हो रही है बस उनको ही फील करते रहिए। जैसे ही उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं को फील करते हैं, विचारों की गति भी शांत हो जाती है। विचारों की गति एकदम शांत हो रही है, उसी संवेदनाओं को फील करते रहिए। सांस की गति को भी ऑब्जर्व करिए। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ, जो भी संवेदनाएं हो रही है उन्हीं को ऑब्जर्व करिए। जैसे ही सांस की गति में मन एकाग्र करते हैं, विचारों की गति भी शांत होने लगती है। गहरा सांस लेते हैं। अब हम मन को मोड़ सकते हैं। आपको पक्का पता चल गया है कि 60 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप समय को कैसे बिताएंगे? सचमुच सोचिए। समय जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है। आपके विचारों में, आपके बोल में, व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? आप कैसे समय बिताएंगे? सचमुच सोचिए। समय जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है। अब 50 दिन ही बाकी है। आपके परिवार के सदस्य, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मित्रों के साथ, ऑफिस में सबके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? समय बीतता जा रहा है, सिर्फ 40 दिन ही बाकी है। पूरा समय ध्यान में लग रहा है कि मैं आत्मा हूं। यह शरीर को मुझे छोड़ना है। ये शरीर तो हड्डी मांस का बना हुआ है, इसे मुझे त्याग देना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। बस संस्कारों को साथ ले जाना है, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बस उसी में लगे, परमात्मा की याद में रात दिन उसी में लगे। सिर्फ 10 दिन बचे हैं अभी। बस थोड़ा ही नींद करते हैं, नींद में भी परमात्मा की याद है कि मुझे आपके पास आना है। एकदम तैयार हो गए हैं, किसी भी क्षण शरीर को त्याग सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक दिन बचा है, आप निश्चिंत हो गए हैं। इस 8 दिनों में बहुत आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया और अब आपकी मृत्यु हो जाती, आत्मा शरीर से निकल जाती है, एक दिव्य प्रकाश शरीर से निकल जाता है, शरीर को लेटा दिया गया। आसपास में लोग इकट्ठे हो गए हैं, आप लोगों को देख सकते हैं, लोग आपको नहीं देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आप कैसे व्यक्ति थे। बहुत ही तेज गति से, जैसे रॉकेट दूर जाता है, रॉकेट से भी अनेक गुना तेज गति से आप सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, फरिश्तों की दुनिया में चले जाते हैं। वहां बस फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, यहां परमात्मा आपका स्वागत करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं पूछते कि तुमने क्या बुरा कर्म किया, तुमको बहुत बहुत प्यार देते हैं। बस उस अव्यक्त ज्योति बिंदु परमात्मा को आप देख रहे हैं, उनसे भरपूर हो रहे हैं, एक अलौकिक अनुभव है। ऐसा लगता है जीवन का यही सच्चा अनुभव है। परम पिता शिव पिता मुझे निस्वार्थ प्यार दे रहे हैं, मैं भरपूर हो रहा हूं। आपको लगता है पहले ही ऐसा अनुभव हुआ होता तो कितना अच्छा होता है, बस मुझे यहीं रह जाना है। और तब परमात्मा आपको कहते हैं कि अभी तुम्हारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, यही सबसे अच्छा अनुभव है। फिर भी परमात्मा आपको समझाते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वापस जाना होगा। ये अनुभव जन जन को सुनाने के लिए वापस जाना होगा, मेरा सत्य परिचय जन जन को देने के लिए वापस जाना होगा। ये सेवा का कार्य करने के लिए मैं तुम्हें नया जन्म देता हूं, तो इसलिए न चाहते हुए भी आप वापस आते हैं। आत्मा नीचे आती जाती है, जब आप नीचे आते हैं देखते हैं कि आपके शरीर को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया है, आप शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आंखें खोलते हैं सभी को सुखद आश्चर्य होता है, कुछ लोग डर भी जाते हैं, परंतु आपके लिए नया जन्म है। आप इस नए जन्म में जो सच्चा अनुभव किया है, जीवन का सत्य जो आपने समझा है, उसी अनुसार कार्य करना चाहते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा के गुणों का ज्ञान जन जन को देने के लिए रहा हुआ समय बिताएंगे। एकदम आप तैयार है, जब भी बुलावा आए आत्मा शरीर को छोड़ करके वापस जा सकती है। एकदम जागृत स्थिति में आते जाते हैं, धीरे धीरे जागृत स्थिति में आते हैं, आसपास में देखते हैं, सभी आत्माएं दिखाई दे रही है, सभी का कल्याण हो, यही भाव है कि सभी का कल्याण करने के लिए मेरा यह नया जन्म हुआ है। ओम शांति शांति। तो यह एक पावरफुल योग था। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? और भी करना। हाँ, किसको बहुत बहुत अच्छा लगा हाथ उठाइए, जिसको बहुत बहुत, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये जो बातें आपने सुनी ना, 5 दिन जो बातें सुनी, कि आपको लगता है कि इसको जीवन में अपनानी चाहिए? हाँ, सबको लगता है कि इसको जीवन में अपनानी चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या करना है? हाँ, देखो ऐसे तो क्या होगा कि अभी कल सवेरे भी हमको मिलना है, आपको बताया भी था, परंतु उसके बाद आप 2-4 दिन घर में करेंगे भी। हाँ, सोचेंगे कि मैं सीढ़ी ले जाता हूँ, वो लेके घर में करूंगा, परंतु 5-10 दिन करेंगे, फिर कोई कारण बना, घर में मेहमान आए, 2 दिन नहीं किया, पूरा भूल गए, तो क्या होगा? जो ग्राफ आपका उन्नति का आगे बढ़ा है ना, डिशुम नीचे आ जाएगा, जैसे सोडा वाटर होता है ना, ऐसे सब निकल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होना हो तो क्या करना है? हाँ, संगठन में हम कर सकते हैं, अगर इकट्ठे होके कुछ लोग भी करे तो नियमितता होगी। इसीलिए आपको कहा था कि फीस देनी है। हाँ, कितनी फीस मांगी थी आपसे? हाँ, कितना? 16 आना। हाँ, 16 आना देंगे? अच्छा, हाँ, 16 आना कौन कौन देगा? हाथ उठाओ, सचमुच 16 आना देंगे? सब नहीं उठा रहे हैं हाथ, चलो 16 आना देने वाले तो कई लोग हैं। हाँ? अच्छा, जिन्होंने 16 आना देने में हाथ नहीं भी उठाया, 16 आना मतलब क्या हो तो समझ गए ना, कि अभी 5 दिन आप आए, कल 6th दिन भी आएंगे, फिर और 10 दिन आना है। हाँ, कम से कम 10 दिन। चंद्रिका बी ने तो लक्ष्य रखा है कि 1 महीना आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे, ताकि उसकी आदत हो जाए, और फिर ज्ञान की बातें भी आप अच्छे से सुनेंगे, और दूर भी नहीं जाना है, आपको डिटेल में भी बताएंगे। हाँ, 4 या 5 स्थानों पर जो भी आपके घर से नजदीक हो, वहां जाकर के और 10 आना देना है। और ये जो बात मैं बता रहा हूं ना, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, भले अभी कहना पड़ता है, परंतु आगे चल के आप खुद फील करेंगे कितना अच्छा है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, वो लोग जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि एक बार आपको बेनिफिट होगा तब तक बोलना, उठिएगा नहीं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी ये, अब थोड़ा समय आपको बोलना पड़ता है, फिर बोलना नहीं पड़ेगा। और एक बात, कि आपको लगता है मेरा कोई स्वार्थ है इसमें, है या ये शिविर करने में कोई स्वार्थ है? हा या ना? जो लोग नहीं बोल रहे क्या समझे? स्वार्थ है ऐसे? अच्छा, देखो कोई स्वार्थ नहीं ना, तो मैं कहता हूं इसलिए भी करो। हाँ, भले आपको लगता है सब फालतू है, हाँ, बस ये 5 दिन हमने कर लिया, बहुत हो गया, अभी नहीं करना है, परंतु मुझे पक्का मालूम है कि आप अगर 16 दिन करेंगे ना, तो फिर अपने आप घर में भी करेंगे। हाँ, कोई हम ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी कोई मान्यताओं को बदली करो, बस जो पुराना कोट पहनना है ना, 16 दिन के लिए उतार दो और इस कोट को पहन लो, फिर आपको जो पसंद आए करना। हाँ, दूसरी एक बात, भाइयों और बहनों, हाँ, ऐसा भाई मिले तो अच्छा है। हाँ, मेरे जैसा भाई हो तो अच्छा है या नहीं? अच्छा है, तो देखो है ना, इस भाई को भी अच्छा लगेगा, इसलिए भी करो, और कोई बात नहीं, भल आपको पसंद ना भी हो, परंतु हाँ, इस भाई को अच्छा लगेगा कि भी आप लोग, मैं पूछूंगा भी चंद्रिका बेन को कि कितने लोग आए अब इसके बाद। हाँ, तो ज्यादा आएंगे तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा, देखो जो इतनी मेहनत की वो हमारी सफल हुई। हाँ, मैं 16 दिन के बाद आऊं तो आप सब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ देखो निमंत्रण नहीं भेजेंगे आपको, और पक्का हमने सोचा है कि कुछ दिन के बाद वापस आना है, आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेना है, स्पेशल आप सबके अनुभव भी सुनने हैं। और हम ये भी चाहते हैं, देखो ना अनुभव से बहुत बड़ा फायदा होता है, डॉक्टर भी नहीं, जो डॉक्टर के पेशेंट ठीक हो जाते हैं ना, अगर मेरा एक पेशेंट ठीक हो जाता है ना, वो 50 पेशेंट को भेजता है, क्योंकि वो ठीक हो गया, वो 50 लोगों को बोलता है कि इनके पास जाओ, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो ऐसे अगर आपकी कई कुछ तकलीफें ठीक हो गई तो आपके आपको देख के और 100 लोग करने लगेंगे, कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए भी कम से कम और जो है 11 दिन तो 10 दिन करना है, और उसके बाद आप मुझे जरूर अनुभव लिखना, लिखेंगे हाँ, और 10 दिन करने के बाद मुझे अनुभव लिखना हाँ, अच्छा से 5 पेज भर के लिखना, हम कहीं प्रिंट भी करेंगे, आप सेंटर पे दे देना, बहन जी मुझे भेज देंगे। तो इसे इस बात जो मैंने बातें बताई उस पर और भी सोचना, चंद्रिका बहन को भी आप सुनना, उनके द्वारा भी जो प्रेरणाएं हैं, फिर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो कहते हैं कि भाई चीनी से गुड़ अच्छा है, गुड़ में बहुत ही आयरन होता है, तो क्या गुड़ नहीं खाए? तो देखो गुड़ में थोड़ा सा ही आयरन होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है ना, 1% भी नहीं है, उससे तो अच्छा है आयरन खाना होना। तो जब भी सीताफल की मौसम हो तब सीताफल खाओ, या तो हरी सब्जियां खाओ हाँ, सबसे ज्यादा आयरन है हरी सब्जियों में, जो हरी काली लाल सब्जियां हैं उनमें बहुत ज्यादा आयरन है। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो खजूर खाइए, अंजीर खाइए, उसमें ढेर सारा आयरन है, गुड़ खाने की जरूरत नहीं है। कहा भी था कि गुड़ वह चीनी का भाई है, तो इसलिए गुड़ चीनी का सेवन कम से कम करो। और एक प्रश्न है कि अंजाइना हार्ट पेन में कौन सी एक्सरसाइज करनी है हाँ, तो हार्ट अंजाइना के प्रॉब्लम में सबसे अच्छा है वॉकिंग, पहाड़ी पे नहीं चढ़ना है, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, पर जहां पर समतल जमीन है वहां पर पहले धीरे धीरे चलो 3-4 मिनट, फिर थोड़ी स्पीड को बढ़ाओ और उसको कायम रखो, कम से कम 20 मिनट कायम रखो, तो हार्ट और अंजाइना के लिए बहुत अच्छा है। जो मूविंग मेडिटेशन कराया आपको वह भी आप धीरे धीरे करो, बहुत अच्छा है। मूविंग मेडिटेशन में भी एक स्पेस को बनाओ, एक गति को बनाओ और उसी गति से करते रहो आधा घंटा, तो भी उसमें आपको बहुत फायदा होगा। और जो मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं करनी है, जो शांति प्रदान करने वाले प्राणायाम है वह करने हैं, एक्टिव करने वाले बिल्कुल नहीं करने। शांति प्रदान करने वाले प्राणायाम 20 मिनट करो, आपके लिए अंजाइना पेन में हार्ट के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो गीत बजते हैं वो हमको मिलेंगे हाँ, तो उसकी भी कैसेट मिल सकती है, 2 कैसेट है, गुण मोती एक कैसेट है और दूसरी एक कैसेट भी, आप काउंटर पर पूछना, दोनों में बहुत अच्छे अच्छे गीत है, वह कैसेट या तो सीडी लेके भी आप घर में भी इन गीतों को बजा करके ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और जो एक डायबिटीज की किताब आपको कहा था उसमें यही बहुत सारी चीजें, भले डायबिटीज से संबंधित लिखा है परंतु वह सबके लिए कायम होगी। आहार के बारे में अच्छा नॉलेज है, एक्सरसाइज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, कैसे मन का उपयोग करें बीमारियों से मुक्त होने में, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और भी कोई अनाउंसमेंट होगी तो देखिए
आप। अच्छा
हाँ देखो, अभी नहीं कहीं जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो भी डायरेक्ट एक्सरसाइज इतना हेल्प नहीं, भले जनरल एक्सरसाइज को अच्छा ही है, पेट की चर्बी कम होगी तो किडनी स्टोन गॉल स्टोन में भी आपको मदद मिलेगी, परंतु इसके लिए अच्छा तो प्राणायाम है, जो कहा है ना संतुलन करने वाला प्राणायाम, वो संतुलन करने वाला प्राणायाम 15-20 मिनट करो बहुत अच्छा है, उससे हेल्प आपको मिलेगी। शांति प्रदान करने वाला प्राणायाम वो भी हेल्प करेगा, एक्टिव करने वाला प्राणायाम है वो भी हेल्प करेगा, और सब भी कर सकते हैं। ये कुछ प्राणायाम है वो ज्यादा करो तो गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जो किडनी स्टोन्स है उसमें बहुत पानी पीना है, इसमें कुछ होम्योपैथी दवाइयां भी मदद करती है, तो ट्राई कर सकते हैं, जहां हमको पक्का मालूम है बात, कुछ समय ट्राई करो, फिर भी नहीं हो और डॉक्टर ये कहे कि भी ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तो जितना जल्दी करा लेंगे अच्छा है। अगर बहुत जब यहां आवश्यकता होती है, समझो अभी आपकी आयु 60 साल की है, अभी आपने ऑपरेशन कराया तो आप उसको सहन कर लेंगे, 80 साल में करना पड़ेगा तो सहन नहीं कर सकेंगे। इसके कारण जहां बहुत आवश्यक है वहां करा लेना भी अच्छा है। अच्छा, कहते हैं कि भी नमक बंद करेंगे तो आयोडीन कैसे मिलेगा? थोड़ा तो आप लेंगे, लेकिन सेंधा नमक सबसे अच्छा है। जो सेंधा लूण है उसमें पोटेशियम है, जो पोटेशियम ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी निकाल देता है, तो इसलिए सेंधा लूण अच्छा है। और थोड़ा सा तो आप लेंगे, उसमें आयोडीन आपको बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, कोई बहुत ज्यादा आयोडीन की आवश्यकता नहीं। इसकी जो पब्लिसिटी हो रही है ना कि बहुत ज्यादा आयोडाइज नमक लो, गलत है। हमें थोड़ा सा आयोडीन चाहिए कि जो आप नमक की मात्रा को कम करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। शायद यह है हॉर्मोन्स बैलेंस इम्बैलेंस में जो लेडीज के प्रॉब्लम होते हैं, तो मूविंग मेडिटेशन प्राणायाम से भी हार्मोनल बैलेंस धीरे धीरे होगा। बहुत ज्यादा है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। मोनोपॉज के समय भी 50 साल के बाद जो बहनों को प्रॉब्लम होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से, उसमें भी मेडिटेशन प्राणायाम मूविंग मेडिटेशन ये सारा का सारा वो हॉर्मोन्स जो कम होने लगे हैं उसके कारण दिक्कत होगी, परंतु मन को स्टेबल रखने में ये बात मदद होगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, कल सवेरे जरूर आना है। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी तो भी कल सवेरे आइए, आपको और भी प्रेरणादायक और जो अच्छी बातें हैं वह सुनने का और एक चांस मिल रहा है। ओम शांति। आप सभी ने इतना धैर्य रख करके अंत तक बैठे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हाँ, सोचा भी था, क्योंकि ये सब कुछ आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाए वो बड़ा मुश्किल है। तो आपको सारे दिन की दिनचर्या बताता हूं कि सवेरे से रात्रि तक हमें कैसे एक अच्छी दिनचर्या बनानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, परंतु जो भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाओ, जितना जल्दी उठो अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ जाओ जितना आप जल्दी उठ सको। ये याद रखिए कि रात्रि को अगर आपको करीब 5-5.5 घंटे की नींद मिल गई तो काफी है। अच्छा, आप रिलैक्स होकर सो गए हैं तो सारा दिन फ्रेश होकर के कार्य कर सकते हैं। तो जितना हो सके जल्दी उठिए, उठते ही आपको कहा कुछ एक्सरसाइज करनी है, बताया था ना, पैरों को सीधा करना है, चद्दर को मोड़ के घुटनों के नीचे रख दो और पैरों को दबाओ, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सवेरे सवेरे करो। और क्या करना है सवेरे सवेरे पता है? दोनों हाथों से शाबाशी दो। हाँ, करो करो, बहुत अच्छा है। हाँ, आज का दिन अच्छा है, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। हाँ, जब आप सोचेंगे कि मैं अच्छा हूं तो और भी अच्छे बनेंगे। ये अच्छी एक्सरसाइज भी है। हाँ, फिर बल ब्रश कर लो, हाथ पैर धो लो, आप चाहे तो स्नान भी कर लो, सबसे अच्छा है, क्योंकि जो एक्सरसाइज करनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद तुरंत ध्यान करना है, तो स्नान करने के बाद व्यायाम करेंगे तो बेस्ट इफेक्ट होंगे, और इससे पसीना भी नहीं होना है। जो सिंपल स्टेप्स हम कर रहे, जरूरत नहीं कि पसीना हो, अगर खुले में आकर के आप करेंगे तो पसीना नहीं होगा। अगर घर में भी कर रहे तो सारी खिड़कियां खोल लो, गैलरी में कहीं टेरेस में जाकर के करो ताकि पसीना नहीं होगा। तो स्नान आदि कर लीजिए, फिर अगर आपको भूख लगी है तो 4 बादाम भी खा सकते, जो कहा था रात भर भिगो के रखनी है, 4 बादाम और 1 अखरोट को, और वो तुरंत भी खा सकते हैं या पहले भी खा सकते हैं। उससे भी पहले जैसे कहा था कि 2 ग्लास गरम गरम पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ दो, आपको डायबिटीज नहीं है तो सेहद हनी भी डाल दो थोड़ा सा, और वह तैयार होने से पहले ही वह पानी पी लो। और फिर पहले प्राणायाम करो। सबसे अच्छा यह है कि जैसे शुरुआत करते हैं तो सवेरे जो करेंगे वो एक्टिव करने वाले प्राणायाम करो, जो बताए ना 5 एक्टिव करने वाले प्राणायाम, याद है ना, जीभ को मोड़ के एक्टिव करना है, ऐसे ही संतुलन करने वाला सांस, सफाई करने वाला सांस, ज्वालामुखी सांस, अमृतमय सांस, ये पांचों का अच्छे से अभ्यास करो। हाँ, कम से कम 15 मिनट दो, फिर एक्सरसाइज करो। आधा घंटा करेंगे तो बहुत अच्छा है, समझो आधा घंटा नहीं है तो कम से कम 25 मिनट करो, और फिर तुरंत ध्यान करना। तुरंत आप ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छी इफेक्ट होगी। और सबसे अच्छी बात कि घर में नियमित नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी चाहो घर में नियमितता नहीं हो सकती है। इसलिए आपको जो एड्रेसेस भी दिए हैं, 4 या 5 स्थानों के जो एड्रेस दिए हैं, बेस्ट है सवेरे सवेरे ही जाओ। अगर सवेरे नहीं जा सकते हैं तो आपको 4 टाइम दिए गए हैं। हाँ, सब और 10 आना देने वाले हैं ना? हाँ या ना? अरे थोड़े ही लोग बोल रहे हैं, मतलब नहीं देने वाले। जरूर अभी भी सोचना हाँ कि और कम से कम 10 दिन तो जरूर जाना। और भी जैसे बहन ने अनुभव में सुनाया कि जब तक ये चलता रहेगा मैं जाऊंगी, तो पक्का है जिंदगी भर चलना है, जिंदगी भर यह कार्यक्रम चलना ही है। हो सकता है कि एक्सरसाइज 1 महीने के बाद अगर आप सबका बहुत अच्छा उत्साह न हो तो हम न भी कर पाए, लेकिन ध्यान योग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह कार्य सदा के लिए चलना है और आप सबको आना ही है, तो वह वहां सबसे बेस्ट है। नाश्ते में सिंपल नाश्ता करो, इसे सबसे अच्छा तो है जो कहा है अंकुरित, अंकुरित मूंग चना सोयाबीन गेहूं को भी अंकुरित कर सकते हो। वह एक डिश अच्छा से छोंक लगा दो, उसमें कुछ सब्जियां भी मिला दो और उसी का नाश्ता करो, बेस्ट है। अगर दही आपको सूट होता है थोड़ा सा दही भी ले सकते, सूट नहीं होता है तो भले नहीं लो। कभी नमकीन दलिया बनाइए, गेहूं के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको भी उपमा की तरह बनाइए और उसी को नाश्ते में लीजिए। और भी कोई सिंपल सी चीज, कभी वैरायटी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, कभी इडली ले लो कभी ढोकला ले लो, लेकिन सिंपल होनी चाहिए। जो 7 बातें बताइए ना, मैदे की कोई चीज नहीं लेनी है और तलना नहीं है कोई चीज को, शुगर नहीं होनी चाहिए, बस ये सिंपल नाश्ता करो, फिर रिलैक्स होकर अच्छे स्वस्थ आप होंगे, अपने काम में लगो। हाँ, साथ में एक फ्रूट जरूर लेके जाओ, हाँ भले फर्स्ट क्लास बैग में लेके जाओ, लेकिन एक फ्रूट अपने पास, जो सीजन का सस्ता फल है वो सस्ता फल अपने पास जरूर रखो। और जब भी भूख लगे 11:30, 12:30, 12:30 बजे तभी वो फल खा लो। हाँ, बीच बीच में पानी पीते रहो। हाँ, पानी भी हो सके तो अपने साथ रखो, ताकि बीच बीच में आप पानी भी पी सकते हैं। फिर भोजन से पहले अच्छी मात्रा में सलाद खाओ, जो कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, चाहे तो बॉईल भी कर दो, थोड़ा सा स्टीम लगा दो, परंतु एक डिश भर के पहले ही कच्ची सब्जियां खाइए। उसके ऊपर अगर आपको सूट हो रहा है तो एक ग्लास छाछ पीजिए, जो बहुत अच्छी है। छाछ का फायदा क्या है, डायबिटीज में तो बहुत अच्छी है, धीरे धीरे शुगर खून में जाएगी। डायबिटीज नहीं है तो भी वो धीरे धीरे शुगर खून में जाएगी, आपको संतुष्टता भी मिलेगी और खाना कम खाएंगे। और उसके ऊपर अभी थोड़ा सा खाइए, अगर एक रोटी में चल जाए तो दूसरी रोटी नहीं चाहिए। हाँ, और 2 से ज्यादा तो खानी नहीं है। क्या करेंगे 2 रोटी के बाद, क्या एक्सरसाइज बताई थी मालूम है ना, 2 रोटी बस, तीसरी नहीं चाहिए। सचमुच काफी है। और बोले जो सिंपल है, दाल चावल जो खाते हो वो भी थोड़ा भोजन भी ऐसे ही सिंपल हो। फिर से हाँ, अगर आपको चाय की आदत है तो भल जब भी आवश्यकता हो आधा कप काफी, आधा कप से ज्यादा चाय की जरूरत नहीं, कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। उसके आगे पीछे भूख लगे तो फिर से आपको फल खाना है। और रात्रि का भोजन जितना हो सके उतना जल्दी करें, रात्रि का भोजन भी सिंपल हो। रात्रि के भोजन में, रात्रि से भोजन से पहले ही वास्तव में शांति प्रदान करने वाले सभी प्राणायाम कर लो। रात्रि 6 बजे के बाद एक्टिव करने वाले प्राणायाम नहीं करने, वो करेंगे तो हो सकता है फिर आपको नींद ही नहीं आएगी, इतने एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए भोजन से पहले वो शांति प्रदान करने वाले प्राणायाम कर लो, उससे पहले हो सके तो एक्सरसाइज भी करो थोड़ा समय, और वॉकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना दो। जहां भी पॉसिबल हो पैदल जाओ, एक बस स्टॉप जल्दी उतर जाओ, चल के जाओ, कार को भी कहीं दूर पार्क कर दो, चल करके जाओ। जितना आप बॉडी को मूव करते रहेंगे फायदा होगा। जो सारी एक्सरसाइज भी बताई है ना ये शिविर में भी, विशेष में आपको क्या बताना चाहता था कि बोलते बोलते भी एक्सरसाइज हो सकती है। तो ऐसे जब जब भी पॉसिबल हो अलग अलग स्टेप्स को करते रहो। और रात्रि का भोजन जैसे का सिंपल हो, पहले सूप पी लो थोड़ा सा, अगर आपको जिनको अच्छी भूख लगती है थोड़ा सलाद भी खा सकते, कईयों को वह हैवी होता है तो भले नहीं खाओ। रात्रि के भोजन में दाल को नहीं लो, जो अलग अलग दालें हैं उन दालों का सेवन नहीं करो, क्योंकि कुछ लोगों को गैस बनता है। रात्रि का भोजन भी फिर से एकदम जितना भी सिंपल हो अच्छा है, और जल्दी से जल्दी करना है, कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप रखो रात्रि का भोजन और सोना है। हाँ, सोने से पहले भी अगर आपको भूख लगती है उस समय तो फिर से भले एक फल खाओ। हाँ, फल बहुत ही अच्छे हैं। और दोनों टाइम खाने से पहले आप इसबगोल का सेवन भी कर सकते हैं। कहा था 20-25 मिनट पहले इसबगोल लीजिए, पूरा एक ग्लास पानी पीजिए और थोड़े समय के बाद वह भोजन करिए। तो समझ में आ गई दिनचर्या? तो ऐसे दिनचर्या को अपनाइए। मेडिटेशन के लिए भी फिर से भी शाम को समय निकालना बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज भी थोड़ी भी करो, भले 15 मिनट करो, 10 मिनट भी ध्यान कर लो तो उससे भी। और रात्रि को सोने से पहले जरूर ध्यान करके सोना है, कैसी भी हालत हो। हाँ, टीवी देखते देखते कभी नहीं सोना है, टीवी देखते देखते कभी खाना भी नहीं है। टीवी देखते देखते खाएंगे तो क्या, तो बहुत ज्यादा खा लेंगे या भूख मर जाएगी, है ना? जैसा सीन देखेंगे वैसी इफेक्ट होगी। तो शांति से परिवार के साथ कम से कम एक बार भोजन जरूर करना है। हाँ, जो आप कहते हैं उससे बच्चे नहीं सीखते हैं, जो आप करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर बच्चों के साथ बैठेंगे तो जो टेबल्स की मैनर है वो वहां सबसे अच्छी सीख सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले जरूर ध्यान करके सोइए। कहानी सुनाई थी ना कि सवेरे से भगवान हमारा इंतजार करता होता है कि भी कम कब हम उसकी ओर देखें और वह हमें सर्व शक्तियों से मालामाल कर दे। तो सोने से पहले भगवान को एक पत्र लिख के भी सो जाओ कि आज का सारा दिन आपने कैसे बिताया, क्या क्या अच्छी बातें हुई, क्या सीखने को मिला है। नेगेटिव नहीं सोचना है, बुरा हुआ तो भी कुछ सीखने को मिला। सोने से पहले जरूर भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि अगर अच्छा दिन बीता तो वह वरदान है, और कुछ बुरी बातें हुई तो वह एक अनुभव है। दोनों रूपी से भगवान का शुक्रिया करो। अच्छा, अब इन पंक्तियों के साथ पूरा करता हूं, और फिर से भी मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप सब मिलेंगे पक्का। हाँ, देखो प्लानिंग कर रहे हैं, आपको अभी नहीं बताते, नहीं तो उसी दिन आप आएंगे, अभी बीच में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो सेंटर पर आते होंगे उनको ही बताएंगे, सोचा है 2 सेशन लेंगे आपके, ऐसा बीच में प्रोग्राम बन ही रहा है तो आपको जरूर आना है। इन पंक्तियों से पूरा करता हूं, और फिर जब पूरा भी हो, कुछ लोगों के प्रश्न भी है, आप लोगों ने लिख के भी दिए हैं, हाँ, तो जिनके प्रश्न हैं वो भी रुकना, भले आपके प्रश्नों के भी रोज उत्तर नहीं देते थे, जल्दी जल्दी चले जाते थे, तो आज जरूर थोड़ा 15-20 मिनट लगा के आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने दिए को भी जलना पड़ता है। ओम शांति।
खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर गिरीश।